जी असगर नदीम सैयद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी असगर नदीम सैयद साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सलीम किदवाई साहब, आप हमारे साथ हैं? जी किदवाई साहब, आप हमारे साथ हैं?
जी हाँ हम
जी, आप इसी जवाब सवाल को रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये तो वो क्लास है या वो कम्युनिटी है माशरों, दोनों माशरों के अंदर, दोनों सोसाइटीज़ के अंदर, जो एक दूसरे के साथ उनको मिलाती है, जोड़ती है। अगर इन्हीं प्लेयर्स को ही दरमियान से निकाल दिया गया तो फिर दोनों रियासतों का क्या होगा, जहाँ पे तफावत के बहुत सारे मौजूदात ऑलरेडी वहाँ तो एग्जिस्ट करते हैं?
जी ये नहायत अफसोसनाक और तश्वीशनाक बात है कि हमारे मुल्क में बदकस्मती से एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिसमें आर्टिस्ट को, राइटर्स को, खिलाड़ियों को आने से रोका जा रहा है और जो आ रहे हैं उन प्रोग्राम में रखनांदाजी की जा रही है। ये मेरी समझ में नहीं आता है कि सियासी इख्तलाफात जो मुल्कों के दरमियान, पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कोई खास चीज नहीं है, ये तो होते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को रोकेंगे, इस चीज में रुकावट डालेंगे तो इस क्या मुस्तकबिल होगा इस पूरे रीजन का, इस पूरे खत्ते का, और इसके बड़े खतरनाक नतायज होंगे। जब बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो फिर खुदाई हाफिज है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि यह जिसकी तरफ भी आपने इशारा किया कि एक बहुत हौसला अफजा बात जो हुई है, उम्मीद अफजा बात जो हुई है वो ये कि हमारी सिविल सोसाइटी जो है हिंदुस्तान में, जिसमें हमारे आर्टिस्ट शामिल हैं, हमारे राइटर शामिल हैं, शायर शामिल हैं, उन्होंने खुलकर वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने अवार्ड लौटाए हैं और इस बात का मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो इस माहौल में तब्दीली लाए। और इन ऐसे लोगों को जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, चाहे शिवसेना हो या आरएसएस हो, तो ये लोग उनको शय मिल रही है और वो ये साथ ये समझ रहे हैं कि अब हमारा राज है और हम जो चाहें वो करें, तो इस बुनियाद पर वो बड़ा शेयर हो रहे हैं। तो इस पे हुकूमत को सख्ती करना चाहिए और जहाँ भी इस तरह की बात हो वहाँ पर बहुत सख्त इकदाम उठाना चाहिए। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी जिस तरह से उठी है उसका यकीनन असर होगा।
जी फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं?
जी मैं आपके
जी चौधरी साहब, ये बताइएगा, हमने बहुत सारे वाक़ात हैं आपके सामने जिसमें हमने ये देखा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, जो मैंने तमहीद में भी कहा, आपके ख्याल में ये तो सफारतकारी का जरिया बनते हैं, खासतौर पर उन हालात में जब रियासतों के ताल्लुकात कशीदा हों, और अगर इन्हीं को दरमियान में से निकाल दिया जाता है तो इसके असरात क्या होंगे?
देखिए बात यह है सर कि जो रियासतें हैं वो एक तमाम जब ऊपर जा रही होती हैं तो तमाम ही शोबों में ऊपर जाती हैं, और जब नीचे जाना शुरू करती हैं तो तमाम ही शोबों में नीचे जाती हैं। ये एक असर ऐसा है, ये एक अमल ऐसा है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जो इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो एक जो बड़ा सियासी अमल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। मोदी साहब जब से बरसर इक्तदार आए हैं, वो जो संघ परिवार का बीजेपी एक हिस्सा है, और जिस तरह से उन्होंने आके स्पॉन्सरशिप दी है शिवसेना को, जो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने और कांग्रेस ने नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी साहब ने अनफॉर्चुनेटली वो स्पॉन्सरशिप उनको दे दी, जिसके बाद ये हुआ है कि जो भारत की रियासत में जो शिद्दत पसंद तबका है वो अब उभर रहा है और उसका असरात तमाम ही शोबों पर होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप ये कहें कि वो शिद्दत पसंदी सिर्फ सियासत तक महदूद रहे, वो ह्यूमन राइट्स तक महदूद रहे, या वो खेल और इसमें हमारे जो सोशल हमारा जो है ड्रामा आर्ट कल्चर है इसमें ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये तमाम सिलसिले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये तस्बीह के दानों की तरह ये तमाम रिश्ते आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। और ये जिस तरह से इस वक्त सरकार की पॉलिसी जा रही है, और जो हमें अपेरेंटली नजर आता है कि गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कहा था कि एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, और ये मुसलमानों के कत्ले आम के ऊपर उन्होंने कहा था, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह से उनके जो मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज साहिबा ने जो बयानात दिए, फिर उनके बुजुर्ग जो बयानात दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली वही माहौल है जो पाकिस्तान जिससे गुजरा जनरल जियाउल हक के दौर में, और आज तक पाकिस्तान उस असरात से बाहर नहीं आ पाया। भारत में जो लोग हैं उनकी जो कहने की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था। हमने तो बहुत सफर किया है, बहुत सफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर नरेंद्र मोदी साहब की वजह से या बीजेपी की वजह से भारत जो है वो स्लाइड कर जाएगा एक हिंदुवादता के मामले में, हिंदुवादता का जो नजरिया है उसमें, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में। उसके बाद तो पूरी रीजन ही, ये इतनी बड़ी रीजन है जिसमें आपको पता है कि एक तिहाई लोग दुनिया के रहते हैं, वो अनस्टेबल हो जाएगी। और बहुत ही मुझे लगता है कि दुनिया के लिए, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद हफ्ते पहले मोदी साहब को ये भावर कराने की कोशिश की कि आप बहुत ही गलत पॉलिसीज ले रहे हैं, अब मुझे यूं लगता है कि अभी भी जो इंटरनेशनल अटेंशन है ये मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी ताकतवर खतरा है। यहाँ पर अगर टर्मोइल होता है तो ये तो दुनिया ही टर्मोइल में चली जाएगी। मुझे लगता है कि भारत के ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है।
तो आपने रीजन पे तो इसके इम्पैक्ट बताए, लेकिन ये बताइएगा कि एक सेकुलर स्टेट का जो लेबल है उसने भारत को बजाय बहुत सपोर्ट किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक खास मकाम दिलाने में, और अगर इस तरह के वाकयात जारी रहते हैं और ये प्रचार भी जारी रहता है कि अब वो भारत सेकुलर स्टेट नहीं है, ये लेबल यानी हट जाता है, तो इसके भारत के लिए क्या असरात होंगे?
बहुत खौफनाक असरात होंगे। भारत में अभी भी आपको पता है कि जो मोदी साहब बतौर इख्तदार आए हैं वो तो अपने इकोनॉमिक नारे की वजह से आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं वो लेके आएंगे, लेकिन कोई भी एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी जो होती है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं होती। हमने अफगानिस्तान में देखा है किस तरह से तबाह बर्बाद हुआ, हमने बाकी मुल्कों को देखा है किस तरह से वो मुआशी तौर पर सफर करते हैं, और भारत का जो एक मिजाज है उसकी तो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है जो बॉलीवुड करता है या जो बाकी उनके जो शोबे हैं वहां से होती है, उसको नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की पॉलिसी तो बिल्कुल उनकी रूट्स को ही तबाह बर्बाद कर देगी। और जिस तरह जो भारतीय सेकुलरिज्म है उसके का जो प्रचार किया जाता है और जो जाहिर है उसकी एक बहुत कामयाबी भी है, फिर भारत में बहुत बड़ी तादाद में अकलियतें हैं। पाकिस्तान में तो देखें अगर ये इस्लाम का बात करते हैं तो ये भी अब है कि 98% तो सिर्फ मुसलमान है, और इसलिए यहाँ पे मुसलमानों के आपस ही झगड़े हैं, लेकिन भारत में तो अकलियतें बहुत बड़ी तादाद में हैं, 20-22 करोड़ तो खाली मुसलमान ही हैं। और अगर ये सेकुलर का वहां से हट जाता है, वहां पे पर्दा या आप कह लें कि जो लेबल हट जाता है, तो ना सिर्फ भारत के अंदर बहुत ज्यादा एक फौज कशीदगी और तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होगी, बल्कि उसके नतीजे में भारत की मईशत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी, जिसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होगा, भारत को भी होगा, और भारत को नुकसान होगा तो फिर रीजन को भी नुकसान होगा।
बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, मुमताज तजियाकार एनालिस्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामने हमारा रब्ता बहाल हो गया जनाब असगर नदीम सैयद साहब से भी, मुमताज राइटर दानेश्वर कालम निगार वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और प्रोफेसर सलीम किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारत से, और हमारे साथ भारत से ही कमल मित्रा चनाय साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं और सियासी तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ एफिलिएट हैं, वो रियासत का पस मंजर भी इस रेफरेंस में हमें बताएंगे जो अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा। लेकिन पहले असगर नदीम सैयद साहब के पास जाते हैं। सैयद साहब ये फरमाइएगा कि आप जैसे जो मॉडरेट लोग हैं, राइटर हैं, दानिश्वर हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल हालात में भी दोनों मुल्कों को जोड़ने की कोशिशें की हैं, इस तरह के जब वाकयात बड़े तवातर से रिपोर्ट हो रहे हैं तो आप उस पर कितने दिल गिरफ्तार होते हैं, या आपके लिए उस काज को आगे लेके चलना कितना ग्रेजुअली मुश्किल हो जाएगा?
देखिए जी, मैं शुक्रिया आपने इनवाइट किया, मैं अभी एक महीना पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थिएटर के सेमिनार में था। तो मैं भारत की जो पढ़ी लिखी क्लास है या मिडिल क्लास है या सिविल सोसाइटी है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो इतनी शानदार क्लास है, वो ऐसे लोग हैं कि जो अपने दिल में बहुत वसत रखते हैं, आर्ट कल्चर के लिए उनकी बड़ी खिदमात है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान मैं अगर हूँ तो वो इंडियन सोसाइटी की वजह से हूँ, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मैं सबके लिए परेशान हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान जिस एकता की बात करता है और जिस इतिहाद की बात और सेकुलरिज्म की बात करता है, उसका अमली मुजाहरा क्योंकि अब नहीं हो रहा, और सोसाइटी को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है, तो इसका नुकसान भारत को है, जिस पर मैं दुखी हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे तकलीफ है, इसलिए कि जब लिबरल फोर्सेस, जब सेकुलर फोर्सेस मार्जिनलाइज हो जाती हैं, तो फिर किसको मौका मिलता है, इंतहा पसंदों को मौका मिलता है आगे आने का। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उनकी गवर्नमेंट से कि इन हालात को समझें कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी वाइब्रेंट डाइवर्सिटी की, प्लूरलिस्ट सोसाइटी की एक मिसाल है और एक बहुत अच्छी जमहूरियत की मिसाल है जिसको हम प्रेज करते हैं। तो काइंडली उसको, अपने उस पॉजिटिव आपके इमेज को प्लीज बचाएं, क्योंकि इस वक्त वो खतरे में है।
सही, और पूरे रीजन के लिए बहुत जरूरी। हमारे साथ रहिएगा, हमें मौजूद हैं हमारे साथ प्रोफेसर कमल मित्रा चनाय साहब भी। चनाय साहब, आप ये बताइएगा, एक इंडिपेंडेंटली पार्टी लाइन से हटके, जैसे इससे पहले फवाद ने भी बात की, किदवाई साहब ने भी कहा, रियासत या हुकूमत इस सारी एपिसोड्स में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर मैं एक सरसरी अगर रिमाइंड कराना चाहूँ, रिकॉल कराना चाहूँ अपने लिसनर्स को भी, जैसे ताज़ा तरीन वाक़या जो आज हिंदू अखबार ने, द हिंदू ने रिपोर्ट किया है, उसके मुताबिक तो यह था कि शिवसेना के कुछ लोग वहाँ पर नई दिल्ली के करीब एक जगह प्ले चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि हम उनके एक्टिविस्ट हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी फनकार थे उनकी वजह से उनको शो को बंद कराना पड़ा। आपको मालूम है माहिरा और फवाद लीडिंग पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनको वहाँ पे धमकियों के बायस वापस आना पड़ा। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये बड़े पॉपुलर नाम हैं भारत के अंदर, क्रिकेट लेजेंड हैं और क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे, उनको रिएक्शन में वहाँ से आना पड़ा। शिवसेना ने इससे पहले बीसीसीआई के जो हेडक्वार्टर को 2 दिन पहले वहाँ पे स्टॉर्म किया, वहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग चल रही थी, वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। इससे पहले पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर, क्लासिकल सिंगर गुलाम अली साहब, उनको अपना प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक बैंड है मिकाल हसन का, उन्हें अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। ये वो वाकयात हैं जिसकी जानिब हम आपकी तवज्जो भी दिला रहे हैं और अपने लिसनर्स को भी याद दहानी कराना चाह रहे थे। तो आपसे सवाल इस रेफरेंस में ये है कि इन सारी इंसिडेंट्स पर हुकूमत खामोश है, तो क्या उसको उसका हामी समझा जाए, या रियासत क्यों खामोश है? रियासत के सामने वो पस मंज़र या वो पेश मंज़र नहीं है जो उसके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, उसकी मईशत के लिए, उसके समाज के लिए?
देखिए, पहले बात यह है
जी
कि शिवसेना जो असली खतरा है उसका छोटा से हिस्सा है। असली खतरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का है, जो बीजेपी का रीढ़ है।
सही।
और मोदी कुछ खास काम बिना आरएसएस की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। आरएसएस का भी हाथ था गांधी के कत्ल में, उसके बाद उसको नेहरू ने और पटेल ने बैन किया, तो ये इनकी इतिहास है। दूसरी बात, जहां तक सेक्युलरिज्म की बात है, वो हमारे संविधान में है और वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता।
सही।
दिक्कत ये है कि मीडिया जो एडवर्टिजमेंट्स वगैरह पे अपना काम चलाते हैं उन पे दबाव आ गया है, और जो हो रहा है उसको काफी फैलाया जा रहा है, और उसके साथ साथ कई पार्टीज जैसे जम्मू और कश्मीर में पीडीपी मुफ्ती सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो सेकुलर फोर्सेस में एक हिस्सा ने अपॉर्चुनिस्ट अलायंसेस किए हैं आरएसएस के साथ, और नतीजा आपके सामने है। मगर इसका मतलब नहीं है कि सेकुलर फोर्सेस नहीं है और हम नहीं लड़ रहे।
बिल्कुल, असगर नदीम सैयद साहब ने भी उसको बहुत अपलॉड किया है, वो मौजूद है। और अभी ये जो एक तवील फहरिस्त है भारत के अदीबों की जिन्होंने अपने अवार्ड्स वापस किए, अपना एग्रेशन या रिएक्शन उसमें एक्नॉलेज कराया, रजिस्टर कराया, वो भी बड़ी बात है। तो इसका मतलब कतन नहीं है कि सोसाइटी बिल्कुल खामोश है या इस तरह के वाकयात को सपोर्ट कर रही है। और आज जैसे एल राम साहब का खत जिसका हम रेफरेंस दे रहे हैं, साबिक नेवल चीफ, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि भारत का जो मुआशरा है वो बुनियादी तौर पर ऐसे रवैयों को इज्तमाही तौर पर कबूल नहीं करना चाहता, नहीं कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। किदवाई साहब, आप बताइएगा, आपका रिएक्शन क्या है, कैसे इसको करेक्ट किया जाए, सारे ये जो बिगाड़ आया है कैसे करेक्ट हो सकता है, या ऐसी कोई इंटेंशंस हैं? मोदी साहब ने बजायर एक दो ऐसे वाकयात को कंडेम जरूर किया है।
मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सरकार की, स्टेट की है
जी,
कि वो ये देखे कि वो लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसा कि अभी कमल मित्रा चनाय साहब कह रहे थे कि ये तो खुद उसका पार्ट है, वो तो वही करते हैं जो आरएसएस संघ परिवार, जो मेन खतरा है उसी के डिकेट पे ये चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो एक मौजूदा कंडीशन है उसमें जो हमारी सिविल सोसाइटी है जिसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, जिसके ऊपर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, वो एजर्ट कर रहा है, उसने एजर्ट करना शुरू किया है। और ये आप देखिए जितने अवार्ड वापस किए हैं उसमें से मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स की है, मुसलमान भी हैं लेकिन वो तो इक्का दुक्का है। तो ये एक बहुत मुझे सिल्वर लाइनिंग लगती है, एक उम्मीद की किरण लगती है। और इसमें हमारा मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो अगर हमारा मीडिया और हमारा सिविल सोसाइटी, हमारे आर्टिस्ट, हमारे राइटर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे शायर, ये सब इकट्ठी होके और एक लेकिन बदकिस्मती यही है कि अभी वो उस तरह से यूनाइट नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में हमको यूनाइट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा और हमको ये एटमॉस्फेयर को, इस एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारा मुल्क की हिस्ट्री जो रही है, हमारा जो मिजाज है, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का है और अगर हम उसी को खत्म कर देंगे तो ये मुल्क कहाँ रह जाएगा। और ये जो हमारा
जी हमारे साथ असगर नदीम सैयद साहब, आपको जाना भी होगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे हालात में जिन का हमने बयान भी किया है खुलासा आपके सामने, उसके बाद फनकार, आर्टिस्ट, प्लेयर्स क्या उन वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, खामोशी से डिस्करेज हो जाएं, अपने आप को साइड लाइन कर लें, या आपके ख्याल में उनको मजीद कोई इत्तेहाद बनाने की जरूरत है दूसरी तरफ भारत के अपने हम ख्यालों के साथ और उसको ज्यादा असर्ट करने की जरूरत है, क्या करें?
देखिए आज मैंने गुलजार साहब का बहुत खूबसूरत बयान लिखा टेलीविजन पे और जो सबसे अच्छी बात हुई है वहाँ जो किदवाई साहब ने भी कहा और मैं कहना चाहता था कि जो अवार्ड वापस किए हैं वो हिंदू अदीबों ने किए हैं और ये सिल्वर लाइनिंग है फॉर इंडिया।
बिल्कुल,
मैं हमेशा इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए बात किया करता हूँ। क्यों? इसलिए कि अगर हम साया मजबूत होगा तो हमें भी उसकी ताकत मिलेगी। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि उनकी जो बड़ी सिविल सोसाइटी है, बड़ी मिडिल क्लास है और वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, वो ऐसी नहीं है। और अगर कोई पढ़ा लिखा वहां नहीं भी है तब भी वो पॉलिटिकली अवेयर है और यही मुस्तकबिल है इंडिया का। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि अगर गवर्नमेंट्स इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड ना करें तो उससे खुदा न खास्ता ये खतरा होता है कि देखिए लिबरल फोर्सेस तो गई, सब कुछ गया, लेकिन खुद इंडिया उस नहज पे चला जाएगा, अल्लाह ना करे कि जहां वो एक और पार्टीशन की तरफ जा रहा हो। तो हम नहीं चाहते, हम दुआगो हैं कि इंडिया अपने सोसाइटी को, समाज को, अपनी हुकूमत को, डेमोक्रेसी को बचाए और उसी में ही वहां की अकलियतों की बचत है।
सही, देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती, अभी अगर हम इस मुख्तसर बहस को भी अपने सामने रखें, खूबसूरती यह है कि जो हमारे पाकिस्तान से पैनल्स में शामिल थे, पहले फवाद चौधरी साहब और अभी जनाब असगर नदीम सैयद साहब, उनको अफसोस हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत का मजबूत होना और भारत का डाइवर्स होना बहुत ज़रूरी है और जो भारत के अंदर हमारे अहबाब मौजूद हैं जैसे प्रोफेसर सलीम किदवाई साहब और प्रोफेसर कमल मित्रा चनाय साहब, तो वो ज़्यादा रंजीदा हैं और अपनी रियासत के खिलाफ ज़्यादा एक तरह से दुख का या गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो ये एक ब्यूटी जो दर हकीकत एक स्पेस फ्राहम करती है, जहां पे हम बात करें कि स्पेस श्रिंक हो रही है, तो दर हकीकत ये वो स्पेस है जो एक तरह से दोनों अतराफ के जहनों को, ब्रेन्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, इंटेलिजेंशिया को इंगेज करने में भी काम आ सकती है। आपका बहुत शुक्रिया जनाब असगर नदीम सैयद साहब, आपने में ज्वाइन किया। आप फरमाइएगा प्रोफेसर कमल मित्रा चनाय साहब, ये सारे गिले शिकवे अपनी जगह पे, लेकिन अगेन इसको कैसे अब इंगेज किया जाए, दोनों अतराफ की जो इंटेलिजेंशिया है इसको क्या रोल प्ले करना है, मीडिया का आपने कहा कि वो इस रेफरेंस में बड़ा जिम्मेदाराना है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज पे उसका गैर जरूरी हद तक पार्टीजन हो जाना, उसको डिस्करेज करने की कितनी जरूरत है?
देखिए साहब, एक बात तो समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो शायर है, जो क्रिकेट वाले हैं जिनकी बहुत प्रेम है, इमरान खान से जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इन सब की, तो ये इसलिए रोका जा रहा है सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए और पाकिस्तान भारत की दोस्ती को कम करने के लिए, खास तौर पे जो सिविल सोसाइटी बीच में लिंक्स हैं, ये एक साजिश है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। और हमारे यहाँ भी हम लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं कि कई राज्यों में हमने बीजेपी को हटा दिया, जैसे दिल्ली में 70-80 सीट में से बीजेपी को केवल 3 मिले। तो बात यह है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है, उसका वो नजायज फायदा उठा रहे हैं और एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। और जो राइटर्स ने अपने अवार्ड्स दिए, उन्होंने कहा कि हम ये क्लाइमेट ऑफ इंटॉलरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इंटॉलरेंस वाला शब्द आम आदमियों में चला गया कि ये इस तरह की सरकार है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, दंगे भी हैं, गांव मांस खाने पे झूठे आरोप लगाए हुए हैं। और हैरानी की बात है कि गोवा में जहां बीजेपी सरकार है वहां बीफ उन्होंने भी चलाया है।
सही।
तो ये जो ऑपरेशन इसके खिलाफ लोग हैं, ये जरूरी है कि सब लोग एक साथ मिलके एक आवाज में बोलें। हमारे यहाँ ये है कि पार्टी के आधार पे या कभी कभी जिले के आधार पे, राज्य के आधार पे लोग बढ़ जाते हैं। तो सिविल सोसाइटी तो मजबूत हो रही है, पर पार्टी सिस्टम में एक पूरी तरह से सेक्युलर अलायंस नहीं बना नेशनल लेवल।
और यहाँ पे यदि पार्टी लाइन से हट के एक जो बड़ी काज है उसके लिए ब्रॉडर जो अप्रोच है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। किदवाई साहब, आप सोल्यूशन बताइएगा, हल क्या है इस रफ्तार से? अगर ये वाकयात होते रहे तो इसमें शायद शुबा ना हो कि भारत का जो इमेज है दुनिया पे उसको नुकसान पहुंच सकता है।
पहुंच रहा है, पहुंचेगा, और इसका असरात जो है वो बहुत बुरे होंगे हमारे मुल्क के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, जो हमारे सोचने वाले लोग हैं, थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी बनती है। और इनके बात में बड़ा असर होता है। ऐसी बात नहीं है कि आप इनको आप अंडरएस्टिमेट करें। ये मौजूदा सरकार कर सकती है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो ये हर मुल्क में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से कि ये वक्त आ गया है कि जब हमको पार्टी लाइन से हटकर और उनसे हटकर, ये एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर मेरा ख्याल से जितनी भी हमारी सेक्युलर पार्टीज हैं उनमें इख्तलाफ नहीं हो सकता है। तो अगर वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं या कोशिश करें, कम से कम सब तो नहीं आ सकते, लेकिन जितने भी आ जाएं, तो इसका यकीनन एक पॉजिटिव और मुस्बत असर हमको देखने को मिल सकता है।
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सलीम किदवाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोफेसर कमल मित्रा चनाई साहब, आपके भी हम मशकूर हैं। असगर रदीम सैयद साहब और फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बेहद शुक्रिया। सामीन, नए उम्मीद के साथ कि दोनों मुल्कों की सिविल सोसाइटी अल्टीमेटली अपनी अपनी रियासतों और अपने मुल्कों को उन पे दबाव डालने में कामयाब होगी, और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात उनको बेहतर बनाने में वो एक पुल का किरदार अदा करने में कामयाब होगी, और जो इंतहा पसंदाना रवैये ख्वाब भारत में हों या पाकिस्तान में हों, उन फोर्सेस को शिकस्त देना होगी। यही उस खित्ते दोनों मुल्कों की भलाई और उस पूरी एक तरह से उस रीजन के अंदर उसकी मईशत समाज दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी पहलू है। इस उम्मीद के साथ हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं, अपने मेहमानों से इजाज़त चाहते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान के पनागुजी जो लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी ग्रेजुअल वापसी का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अफगान पनागुजीं पाकिस्तान में जो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। बताया जाता है कि कम से कम 15 लाख रजिस्टर्ड इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर पनागुजीं अफगानिस्तान के मौजूद हैं, और इतनी ही या इससे भी कहीं ज़्यादा तादाद ऐसे अफगान पनागुजीनों की हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम ख्याल किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों से या कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक दो बरसों से जब अफगानिस्तान के अंदर निस्बतन हालात बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़े हैं, अफगानिस्तान के पनागुजीनों की वापसी पे खासा फोकस रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान ने भी इस रेफरेंस में एक बड़ी तफसीली प्रेस ब्रीफिंग की थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, हम इंसानी पहलू को सामने रखेंगे, लेकिन यह जरूरी हो गया है कि अफगान पनागुजीनों को वापस उनके मुल्क में भेजा जाए। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उनमें से कई एक ये नुकता नजर रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जराइम या दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है तो बहुत सारे दीगर फैक्टर्स में से एक इलीगल इमिग्रेंट्स का فیکٹر بھی وہ اس میں موجود ہو سکتا ہے. ابھی کا بتایا جا رہا ہے یو این ایچ سی آر جو کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے پناہ گزینوں کے لیے, اس کا دعویٰ یہ سامنے آیا ہے کہ کم از کم اس سال 50,000 پناہ گزینوں کو, افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن جو ہے بھیجا گیا ہے, ان کو فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اس بین الاقوامی ادارے کی جانب سے, اور یہ ایک عمل ہے جو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جاری رہے گا. یو این ایچ سی آر کی جو ترجمان ہے دنیا اسلم خان, انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ سال پاکستان سے افغانستان واپس جانے والی افراد کی تعداد جو ہے اس سے یعنی 13,000 تھی, جبکہ اس سال 50,000 سے زیادہ ہے. ہم جائزہ لیں گے اس کا معاشی اور سماجی دونوں اعتبار سے کہ پاکستان کے اوپر کتنے پریشرز ہیں اور وہ کتنا مزید ہوسٹ کر سکتا ہے افغانستان کے ان پناہ گزینوں کو, خاص طور پہ اگر وہ کوئی الیگل امیگرینٹس وہاں پہ موجود ہیں تو اس کے لیے کیا تھریٹس ہیں پاکستان کے لیے. ہمارے ساتھ ہیں انالیسس کے لیے شاہد حسن صدیقی صاحب, ممتاز اکانومسٹ ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, راشد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, کنسلٹنگ ایڈیٹر ود سرچ فار کامن گراؤنڈز, اور افغانستان سے ہمیں جوائن کریں گے روح الامین صاحب, کابل بیسڈ صحافی ہیں اور اپنے ایک اخبار اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. شاہد حسن صدیقی صاحب, پہلے تو اگر ہم صرف اس کے معاشی پہلوؤں پہ دیکھیں, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے معاشی جو اسٹرکچر ہے اس پہ بہت زیادہ دباؤ تھا افغان پناہ گزینوں کا, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو ہیلپ بھی بہت کیا ہے. تو اوور آل اس ریفرنس میں پاکستان کی معیشت پہ اتنی بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کی موجودگی کے کیا اثرات رہے, اور اب اگر یہ گریجولی واپس جا رہے ہیں تو کیا نتائج ہم دیکھ سکتے ہیں؟
جی, میں عرض کر دوں کہ افغان مہاجرین 35 سال ہو گئے ہیں
جی
جو پاکستان میں مرحلے وار آتے رہے ہیں, مگر معاشی مسئلہ ہو یا سماجی مسئلہ ہو, سب سے اہم جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. یعنی اگر 35 سال تک لوگ اپنے گھر سے دور رہیں اور ان کے جو صحت کے مسائل, تعلیم کے مسائل, گھر بار چھوڑنا تو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے, لیکن یہ تھا کہ ان کو کیا تکالیف ہیں. یہ صحیح ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے مستقل سیٹل ہو گئے ہیں, کاروبار کر لیا ہے, کروڑوں کو کاروبار کر رہے ہیں, شادیاں کر لی ہیں, لیکن واضح ہے کہ اکثریت تمام مدد کے باوجود جو پاکستان نے دی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹیز دی ہے, ان کو سنگین جو ہے سماجی مسائل کا سامنا ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے, اور تیسری میرے خیال سے ایک انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ واپس جائیں, مگر ابھی پچھلے دنوں جو بھی واقعات پیش آئے کہ صدر اوباما نے جو فیصلہ یہ کیا ہے کہ ابھی فوجیں فی الحال اتنی نہیں واپس جائیں گی, تو ایک اور بے یقینی کی کیفیت ہو گئی. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. اب اگر معاشرت اور جرائم کے لحاظ سے آپ دیکھیں, مگر اس میں جو دوسری میرے خیال سے ایک اور بہت چیز یہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلے پاکستان میں جو مہاجرین آئے تو ظاہر ہے وہاں ڈیفیکلٹیز تھیں, پاکستان میں ان کو ایک طرف ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور خود دوسری طرف فوجی آپریشن کے نتیجے میں بھی ان کی مشکلات پیش آئیں. تو جب اس سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی مستقل تکالیف میں ہو تو وہ خود ایک انتہا پسندی کو اس میں فروغ پاتی ہے, اور انتہا پسندی جو ہے وہ دہشت گردی کے سبب بنتی ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور پاکستان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ طاقت کا استعمال اور ہارٹ اینڈ مائنڈ کو فراموش کرنا پاکستان اور امریکہ شاید دونوں نے نظر انداز کر دیا ہے. اب آپ پاکستان میں یہ دیکھیں کہ امداد ضرور آئی, لیکن اگر 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جعلی کرنسی کا کاروبار بہت زیادہ فروغ پایا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک نے بھی انسٹرکشنز ایشو کی تو وہ بھی باہر سے پاکستان آئی, جس میں یہ لوگ ملوث, کچھ لوگ ملوث رہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسمگلنگ جو پاکستان میں بڑھی, اور اگر آپ دیکھیں 1979 کے بعد جو ڈرگ کلچر اور کراشن کوف کلچر, یہ تو پاکستان میں موجود نہیں تھا, لیکن جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ ایجنٹس ضرور ہیں, لیکن یہ کہ کچھ ایجنٹس ان کو یوز کرتے ہیں, جو بیرونی ایجنٹس ہیں وہ پاکستانیوں کو بھی یوز کرتے ہیں اور اس کو بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی کی کا وارداتیں بڑھیں, اس سے سرمایہ کاری اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ملکی سرمایہ کاری بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے, اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. معیشت کی شرح نمو ہماری جب سست ہوئی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں آئے. سب سے بڑی جو ضرورت پڑی ہے وہ تعلیم کے شعبے میں پڑی, اور میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ جو قومی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں اس سال پاکستان نے 1,350 ارب روپیہ کم خرچ کیا, تو تعلیم کے شعبے پہ ضرورت پڑی, صحت کے شعبے پہ ضرورت پڑی, اسکول تباہ ہوئے, انفراسٹرکچر تباہ ہوئے, اور بیماریاں ان لوگوں میں بہت پھیلی ہیں, और उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात मैसर नहीं आई, तो मईशत से तबाही से कतः नजर में इंसानी अलमियों को मैं समझता हूँ कि ये जो जन्म ले रहा है और उसकी वजह से इंतहा पसंदी को जो फरोग मिल रहा है और इनको यूज किया जा रहा है, ये एक ऐसा मसला है जिसमें आर्मी बिरादरी को गौर करना होगा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने दोनों हवालों से मुआशी हवालों और समाजी हवालों से खासतौर पर आपने उस पर फोकस रखा है। रूहुल अमीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ हम कराचों के काबुल बेस्ड जर्नलिस्ट और अपने एक अखबार को हेड करते हैं, और रशीद बुखारी साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन। रशीद बुखारी साहब आप बताइएगा, आप भी पहले समाजी जावियों पर बात कर लेते हैं, बहुत इंसानी अलमिया की बात की है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी कि अगर 35 बरस हो गए हैं तो ऑलमोस्ट दो जनरेशन्स हो चुकी हैं, एक वो लोग जो आए थे और अब उनके बच्चे या शायद उनके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा वापस अपने वतन जाना, वापस अपने घरों में सेटल होना, और इससे भी हट के कि वहाँ पे हालात कितने उनके लिए मुनासिब हैं या नहीं हैं। जी राशिद बुखारी साहब,
जी मैं डॉक्टर शाहिद हसन खान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि दो पहलू नहायत अहम हैं इस बहस पे को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये इंतहा पसंदी और ये सब चीजें, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है पाकिस्तान का जिसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यही है कि पाकिस्तान में शायद ये दुनिया का वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को अपने यहाँ पनाह दी है। अब उसकी वजह से जो इसकी मईशत पे बोझ पड़ा, इसकी समाज में जो तब्दीलियां रुनमा हुई, इसके माशरती रवैयों में और खुद पाकिस्तान की नस्ल के ऊपर जो इसके असरात हुए, जाहिर है उस पर बहुत ज्यादा बात करने की गुंजाइश है, लेकिन इस सब को भी देखते हुए इंसानी हमदर्दी के उस पहलू को पाकिस्तान ने हमेशा सामने रखा और अफगान भाइयों को बिल्कुल कोशिश की कि इनको एडजस्ट किया जाए यहाँ पे जहाँ तक मुमकिन हो। दूसरी चीज ये है कि शाहिद हसन साहब ने इस्लामी इंसानी अलमिया की बात की, यकीन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसमें मेरा ख्याल है कि घर बार छोड़ना और महाजरत अख्तियार करना यकीनन ये एक बहुत बड़ा दुख है इंसानों के लिए, और उसके लिए नई जगह पर जाकर भी एडजस्ट होना और वापस अपने मुल्क में भी जाकर एडजस्ट होना, दोनों चीजें बहुत मुश्किल हैं। तो इसको हमें इंसानी हमदर्दी के पहलू से देखना होगा। यकीनन पाकिस्तान हमेशा के लिए ये सारा बोझ नहीं उठा सकता और अफगान महाजरीन को जहाँ अफगानिस्तान में इस चीज की गुंजाइश पैदा हो जैसे जैसे उनको वापस भेजना चाहिए ताकि वो अपनी शिनाख्त और अपने मुल्क में वापस जा सकें और वहाँ पे वहाँ की मईशत के लिए मजीद इसी तरह से काम कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल ये भी है कि इसमें हम जो लोग अगर कोई आप पूरी दुनिया का फिनोमेना देख लें, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है कि जब दूसरे मुल्क में जाकर जो लोग एडजस्ट हो जाते हैं, इंटेग्रेट हो जाते हैं, वो वहाँ की मईशत का और समाज का हिस्सा बन जाते हैं,
वापस आना
तो मेरा ख्याल है जी उनके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल होता है।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। रूहुल अमीन साहब से भी कुछ अपडेट लेते हैं, काबुल से हमारे साथ हैं। रूहुल अमीन साहब आप बताइएगा, वो अफगान पनाह गुज़ीन जिनकी वापसी का सिलसिला जारी है, वो कितने आसानी से दोबारा अफगान मुआशरे में एडजस्ट हो रहे हैं, एक बात, और दूसरा ये कि इंसानी तौर पर तो ये भी देखा जाता है कि जब वापस अपने घरों को जाया जाए तो हालात उस जैसे ना हों जिनमें नकल मकानी करना पड़ी थी, हिजरत करना पड़ी थी, तो अब अफगानिस्तान के हालात निस्बतन कितने बेहतर हो चुके हैं या कितने आपके ख्याल में सपोर्टिंग हैं, साजगार हैं अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के लिए?
जी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि हालात जो हैं वो साजगार हैं या साजगार नहीं है। हम साजगार की बात करें, यहाँ पे हालात उनके लिए अच्छे हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी की हालत क्या है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं।
सही,
तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी डिटेरियरेशन हो रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान जो है एक कंज्यूमर सोसाइटी है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं है।
ठीक,
इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेसिक एकोमोडेशन रेट जो है वो डेफिनेटली वो उतना नहीं है जितना इंटरनेशनल कम्युनिटी वो एक्सपेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पिछले 3-4 साल से पर्टिकुलर फोकस रहा है कि वो जाने से पहले जो है वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं जितने भी अफगान फ्यूचर हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हो या चाहे ईरान में हो, उनका पर्टिकुलर एक फोकस रहा है। लेकिन उनको अभी तक जो है बड़ी कामयाबी इसलिए हासिल नहीं हो सकती कि इनमें तीन फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं।
सही,
سب سے پہلے کہ سیکورٹی سچویشن اچھی نہیں ہے, دوسری کہ یہاں پہ جو اپرچونیٹیز کا وہ بینڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ سترتا جا رہا ہے, اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو تھی ان کی کیپٹل فلائٹ ہونے لگے ہیں یہاں سے. اور تیسرا فیکٹر جو ہے, اگر ایک بندہ نے رہائش یا پاکستان میں ہوئی ہے یا ایران میں ہوئی ہے, تو وہاں پہ جو کلچرل سوشل پولیٹیکل اکنامکس جتنے وہ ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں, تو اس کے سائیکولوجیکل کولنگ پہ مائنڈ سیٹ وہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں. وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر انیشیل ایئرز میں وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی سا محسوس کرتے ہیں, اور جب اس کو راستے وہاں کی نہ ملیں, سیکورٹی اتنی اچھی نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی ان کا رجحان جو ہوتا ہے وہ یا تو یورپ کی طرف ہونے لگتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی آج ہی ایک رپورٹ آئی یونیسیئر کی طرف سے کہ 120,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اب 44 یورپین ممالک میں جو ہیں وہ پناہ کے لیے جا چکے ہیں.
صحیح.
اور ساتھ ساتھ جون 2015 سے لے کے ابھی تک جو ہے 90,000 سے زیادہ افراد جو انڈاکومینٹڈ تھے پاکستان سے انہوں نے ریٹرن کیا, لیکن پھر آئی او ایل جو ہے جو ایک مائگریشن کا ادارہ ہے ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پھر یہاں پہ آ کے کنڈیشن ہے کہ پھر پاکستان کی طرف یا ایران کی طرف نکلنا ہم کو شروع ہو جاتا ہے.
یہاں پہ یعنی آسان نہیں ہے ان کے لیے واپس سیٹل ہونا, اور حالات اس طرح سے مناسب نہیں ہیں, سازگار نہیں ہیں, تو یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی اس میں بہت بڑا کردار بنے گا. آپ کا بہت شکریہ روح الامین, آپ نے ہمیں کابل سے جوائن کیا. راشد بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلا ایک سیگمنٹ ہے اس میں میں آپ کے کوئک کمنٹس لینا چاہوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بچوں میں غذائی قلت, اور خاص طور پہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر. ایک ریفرنس یہ دیا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر جو ایک سروے کیا گیا تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ کم از کم ملک کے 20 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں یا نوزائیدہ بچے ہیں وہ انتہائی غذائی قلت کا یا غذائی کم خوراکی کا شکار ہیں, ان کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, اور ان 20 اضلاع میں سے 10 کا تعلق پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے سے ہے اپنے رقبے کے اعتبار سے, یعنی بلوچستان سے, اور وہاں پہ بڑی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو کم خوراکی کا شکار ہیں, جو ان کے جسم کی یا ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اس لیے وہاں پہ بلوچستان کی حکومت نے آسٹریلیا کی مدد سے, آسٹریلیا کے تعاون سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیمانڈز ہیں بچوں کی وہ پوری کی جائیں. ایک عربی کا مقولہ بھی ہے کہ العقل السلیم ہے فی جسم سلیم, اگر آپ کا جسم اچھا ہے تو اس میں عقل بھی اچھا ہوگا, صحت مند ہوگا, اگر جسم صحت مند ہے تو عقل بھی صحت مند ہوگی. تو بہت زیادہ یہ ضروری ہے مینٹل کیپیبلٹی یا اس کی استعداد کار کو بھی بڑھانے کے لیے, ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے بھی, کہ آپ کے جسمانی جو غذائی ضروریات ہیں ان کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں. پاکستان کے اندر, پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بھی اس سے پہلے ایک اسکیم شروع کی گئی تھی جس میں بچوں کو خوراک فراہم کی جاتی تھی اسکول کے اندر, یا ان کے پیرنٹس کو اس ریفرنس میں پہنچائی جاتی تھی کہ وہ صرف خوراک کے سبب یا گھریلو ضروریات کے سبب بچوں کو اسکول سے نہ نکالیں, ڈراپ آؤٹ کی ایک بڑی ریزن سمجھا جاتا ہے. ذوالفقار دورانی سیکرٹری ہیں, صوبائی سیکرٹری ہیں ایجوکیشن کے, انہوں نے بات کی وائس آف امریکہ سے چند سیکنڈ کی, ان کی آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں, پھر اس کے دو حوالوں پہ بات کرتے ہیں, ایک تو ڈائریکٹلی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بچوں کی, اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اگر سپورٹ کرتی ہے تو اس کے کردار کو سراہنا یا تسلیم کرنا, اکنالج کرنا وہ کتنا ضروری ہے. اکبر دورانی صاحب کیا کہتے ہیں؟
پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس کا تقریباً 1492 ملین روپیز کا ہے. پرپز یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں کچھ 7 ڈسٹرکٹس میں ہم فوکس کریں کہ مدر اینڈ چائلڈ نیوٹریشن کو بہتر کیا جا سکے, اور گورنمنٹ آف بلوچستان خود کمیٹیڈ ہے کہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے جو مال نیوٹریشن کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے.
یہ ذوالفقار دورانی صاحب تھے, میں سے پہلے اکبر دورانی صاحب کہہ گیا, وہ چیف سیکرٹری ہیں صوبے کے. تو اب چلتے ہیں واپس اپنے پینلسٹ کے پاس, راشد بخاری صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے, اور اس کے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا پروفیسر منیر کاکڑ صاحب نے, کوئٹہ بیسڈ اینالسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب پہلے آپ بتائیے گا, تعلیم کے اچھی تعلیم کے حصول کے لیے بڑی صحت مندانہ سرگرمی کے لیے صحت مند ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر وہاں پہ جو کم خوراکی کا شکار بچے ہیں ان کو ایڈریس کرنا اس مسئلے کو کتنا ضروری ہے؟
تھینک یو جی، میں سمجھتا ہوں آپ نے اس کا جو میڈیکل اسپیکٹ ہے، ظاہر بات ہے ہم اتنے کمپیٹنٹ تو نہیں ہیں کہ جب میل نیوٹریشن ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بچے کے امیون سسٹم پہ، اور جب امیون سسٹم پہ تو وہ تو ڈیزیز پرون ہوتا ہے، اس کی مینٹل جو کیپیبلٹیز ہیں وہ سیریسلی افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سیریسلی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے مینٹل کیپیبلٹیز، ظاہر بات ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن کا حصول اس کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا، یا اس طرح کا ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا جو ہم چاہتے ہیں، جو ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی ہے میل نیوٹریشن کی، بلوچستان میں یہ ایشو جو ہے یہ بالکل موجود ہے سارے ایریا میں، وہ چونکہ وہ اس لیے موجود ہے کہ صوبہ جو ہے یہاں پہ اقتصادی پسماندگی ہے، یہاں کے جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں اب پاکستان کے مقابلے میں، بلکہ پاکستان کے مقابلے میں بھی ان کی جو وہ ہے سطح ہے انتہائی کم ہے. تو اب یہ چونکہ یہ بلوچستان میں اقتصادی پسماندگی ہے، اقتصادی پسماندگی کے وجوہات جو ہیں وہ ایک نہیں بہت سارے ہیں. دیکھیں ایگریکلچر جو ہے یہاں پہ انڈسٹری نہیں آئی، یہاں پہ بزنس اتنا نہیں آیا، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے ہم اقتصادی طور پر ترقی نہ کر سکے. جب ہم اقتصادی طور پر ترقی نہ کر سکے تو ہمارا جو پر کیپیٹا انکم تھا وہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم ہے، اور جب انکم کم ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، بچوں کی صحت، ان کی میل نیورشمنٹ، ان کا ایجوکیشن. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر آپ وسائل کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں بلوچستان جو ہے اگر ریسورسز دیکھ لیے جائے تو وہ جو ہیں وہ تو سارے پاکستان میں صوبے میں جو وسائل ہیں، آپ کاپر سے لے کے گیس تک، آپ ایگریکلچر دیکھ لے، زمینیں دیکھ لے، کتنی زرخیز زمینیں ہیں، لیکن لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. جو ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں. تو اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ایشو ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک ایسا ویشیس سرکل ہے کہ ہم پولیٹیکلی انسٹیبل کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں. پولیٹیکلی انسٹیبل اس لیے ہیں کہ قومی دائرے میں بلوچستان کی حیثیت ہمیشہ ایک مارجنلائزڈ سی رہی ہے، نیشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے ایک نہیں یہ تین چار انسرجنسیز ہیں. ابھی آپ صرف دیکھ لیں کہ لا اینڈ آرڈر، فرض کر لے اگر لا اینڈ آرڈر یہاں پہ صحیح ہوتا تو لا اینڈ آرڈر کا بجٹ اگر 50% کم کر لیں، میرے خیال میں وہ کوئی 16 سے 20 ارب تک لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوتے ہیں. تو 8 سے 10 ارب روپے جو ہیں اگر ہم بچوں کے سکولوں میں ان کو خوراک دے دیتے، ان کا فوڈ،
اس کے نتائج کہیں بہتر ہوتے ہر لحاظ سے،
تو نتائج جو ہیں وہ کہیں بہتر ہوتے.
جی ہمارے ساتھ لے گا رشید بخاری صاحب سے مل لیتے ہیں. رشید بخاری صاحب، ایک تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ کو اپنے طور پہ بھی کرنا چاہیے، جو سیکورٹی کے ایکسپینڈیچر ہیں ان میں بھی کٹ لگا کے ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ آبادی بھی زیادہ نہیں ہے صوبے کی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح کی عموماً جو رفاہی پروجیکٹس ہیں کوئی ان کا ماؤتھ آرگن بننا مقصود نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ہمیشہ پروجیکٹس میں ہمیں انٹرنیشنل ڈونیشن جو ہیں وہ نظر آتی ہے. اس میں بھی جیسے آسٹریلیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرے گا. آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، آج کل ان تنظیموں پہ ویسے کچھ سختیاں بھی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سراہنا کتنا ضروری ہے، اکنالج کرنا کہ اس طرح کے پروگرامس میں وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں.
جی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صحت اور کم خوراکی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں اپنے ملک میں اگر ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے.
بالکل،
کیونکہ آپ تعلیم ہو، ترقی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر لوگ بچیں گے ہی نہیں، بچے زندہ ہی نہیں رہیں گے تو وہ تعلیم کیا حاصل کریں گے. तो ये बहुत सारे अलमिये तो हम देख चुके हैं। अभी थर में भी आपने देखा कितने बड़े वाकयात हुए, और जब बच्चे मरना शुरू हुए तो जब जाके कौम को ख्याल आया। तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो क्लोजली वॉच करती है इन सब चीजों को और मुल्क दुनिया में पावर्टी को और इन सारे मामलों को देख रही है, और उसकी नज़र में ये चीज़ें आ जाती हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो या हमारे लोग जो हैं इस हवाले से उनके बारे में उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब जैसे दुनिया आप देख रहे हैं कि मुसलसल एक बाहमी इन्हसार की तरफ बढ़ रही है, इसमें अगर जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे इन इंटरनेशनल इदारों को कि जो किसी भी मुल्क में जाके गुर्बत के लिए, तालीम के लिए, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए इसके अलावा क्या मोटिवेशन है कि वो सिर्फ सेल्फ लेस होकर काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वो अपने बजट में ये हिस्सा मुख्तस करते हैं, वो अपने माहिरीन भेजते हैं, उन्होंने तरक्की का एक लेवल अचीव किया है, उन्होंने ये मसाइल देखे हैं, इसलिए इस चीज का इदराक करते हुए वो इन चीजों को अहमियत दे रहे हैं।
सही।
मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए चांस है कि हम उसको ना सिर्फ एक्नॉलेज करें बल्कि पूरे मुल्क में इसकी कैंपेन होनी चाहिए, उनसे बढ़ के खुद हमें अपने वसाइल मुख्तस करने चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो बात की बलूचिस्तान से कि हमें अपने सिक्योरिटी के बजट पे भी कट लगा के, लॉ एंड ऑर्डर के पे भी कट लगा के अगर इस पे लगाना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा जरूरी है।
बहुत शुक्रिया राशिद बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ रहे। प्रोफेसर साहब एक मिनट में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल पे बात कीजिएगा कि आपने जैसे कहा कि बिल्कुल आबादी के तनासब से देखा जाए, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो शायद वहां से भी ये जरूरियात पूरी हो सकती थी लेकिन नहीं की जा सकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे कदम बढ़ा रही है तो कैसे उसको एक्नॉलेज किया जाए, करना चाहिए?
देखिए जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जाहिर बात है हम अप्रिशिएट तो करते हैं, यकीनन करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एड का जो सिलसिला होता है वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। देखिए उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो मेरे ख्याल में अगर हम अपने वसाइल से अपने लोगों से वही चीज करना चाहें तो मैं समझता हूँ हम 50% में भी वो कर सकते हैं। देखिए उनके जो कंसल्टेंट आएंगे, उनके जो सिलसिले होंगे, जाहिर बात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, उनको मेंटेन जो है वो करना वो जरा मुश्किल है, लेकिन इसकी हमें अप्रिशिएशन जो है वो करनी चाहिए। लेकिन एक और इश्यू भी है, देख लीजिए बलूचिस्तान में, देखिए हमें जो है अब जरा देखिए कुछ हमें भी तो सच बोल देना चाहिए। ये जो हमारे डेवलपमेंट जो बजट है और इस बजट की जिस तरह से एलोकेशन होती है, मैं समझता हूँ उसको देखे इंसान जो है मेरे ख्याल में उस कोई इकोनॉमिक रेशनल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये वसाइल जो है ये किस तरह से हर एक मेंबर जो है 30-30 करोड़ रुपए एमपीए जो है 30-30 करोड़ रुपए उसका डिस्क्रिशन होता है। देखिए डिस्क्रिशन जो है वो एक फर्स्ट स्टेप होता है करप्शन
पॉलिटिकल ब्राइबी है।
देखिए आप एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एब्सोल्यूट पावर जब आपने दे दिया तो दैट करप्शन एब्सोल्यूटली। बात ये है कि इसको अगर सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूँ कि सुबह अपने वसाइल से खुद तकरीबन 50% जो ये इश्यू है
वो एड्रेस कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका।
लेकिन जो
जी
ठीक है
जी प्रोफेसर मुनीर काकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया, हमारे साथ आप मौजूद रहे। और सामने अगले सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा और उस सेगमेंट में हम शाम की सूरत हाल पर बात करेंगे। दो डेवलपमेंट्स हैं, एक तो ये कि सदर बशार अल असद वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर तकरीबन 4 साल से जो खाना जंगी जारी है उसके खात्मे के लिए किसी पोलिटिकल सोल्यूशन की जानब, किसी सियासी हल की जानब आगे बढ़ने में वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, ये एक इंडिकेटर भी है। अब देखना ये होगा कि इससे मुराद क्या है, क्या वो अपनी मुखालिफ फोर्सेज के साथ से मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, उनको स्पेस देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ उनकी जो ये स्टेटमेंट है, खासतौर पे रशियन एक जो डेलीगेशन है जो रूस सबसे बड़ा हामी भी समझा जाता है सदर बशार अल-असद की हुकूमत का, उनके डेलीगेशन से मुलाकात के बाद सामने आया है। और हमने एक स्टेटमेंट और जो रूस की तरफ से देखा है वो भी थोड़ा इस रेफरेंस में मुख्तलिफ था कि जो रशियन फॉरन मिनिस्टर हैं सरगेई लारूफ, उन्होंने ये कहा है कि अगर آلریڈی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کامن گراؤنڈ چاہتے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے شام کے سیاسی مسئلے کے حل میں وہ کردار ادا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب چاہتا ہے کہ جو فری سیرین آرمی کو جیسے وہ سپورٹ کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی مدد کے لیے تیار ہیں. تو یہ کیا تبدیلی ہے اس کا انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے جناب سلطان علی صاحب, انالسٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے, بذات خود ایک پروگرام کو پی ٹی وی پہ ہوسٹ بھی کرتے ہیں, اور چودھری نعمان ظفر صاحب. اور 7 منٹ ہیں ہمارے پاس, بہت کم وقت میں اپنے مہمانوں کو زحمت بھی دوں گا اور ان کا کوئک اینڈ بریف انالیسز ہوگا. سلطان علی صاحب, جو میری تمہید تھی اسی کے اندر سوالات بھی ہیں. سیریا کی سچویشن, کیا پولیٹیکل سولیوشن سامنے آ سکتا ہے ان دو ڈیولپمنٹس کے بعد؟
دیکھیے, آپ نے تمہید میں دراصل سب کچھ ہی تقریباً بتا دیا, لیکن اس کے انالیسس یہ بنتی ہے کہ کم از کم یہ خوش آئند بات ہے کہ خانہ جنگی کو چھوڑ کر کے جو ہے لوگ اگر گفت و شنید کی طرف آ رہے ہیں, لیکن خانہ جنگی جو ہے وہ صرف ریبلز کی طرف سے تو نہیں ہے نا, یہ تو بشار الاسد صاحب کی طرف سے بھی ہے. انہوں نے کافی ظلم ڈھائے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر, جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہوئے خانہ بدوشی کے اوپر. اس لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ کم از کم وہ اس کے اوپر آمادہ ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے, لیکن اس بات چیت میں جو انہوں نے کیویٹس ڈالے یا شرطیں عائد کی ہیں وہ یا تو ہو سکتا ہے کہ نیگوسیشن کے لیے ہو, لیکن اگر وہ اس پہ قائم رہے تو پھر گفتگو کو آگے لے جانا مشکل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ تو الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو ختم کیا گیا.
لیکن اب کیا تفریق, کیا وہ انہوں نے یہ تفریق کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ ریبلز کو ٹیررسٹ کی ہی صف میں لا کھڑا کرتے تھے, تو کیا اب ایسی کوئی درمیان میں ایک لکیر کھینچتی نظر آ رہی ہے کہ ریبل الگ ہیں, ٹیررسٹ گروپس الگ ہیں؟
نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ابھی جو حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے پیوٹن صاحب کے ساتھ, جو یہ خفیہ ملاقات کے لیے روس تشریف لے گئے تھے, اور آپ نے ابھی ذکر کیا ہے جو ایک ڈیلیگیشن روس سے آیا ہوا ہے جس کے ساتھ آج ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد مجھے میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے اس کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب وہ ریبلز کو اور جو ٹیررسٹ گروپ ہے اس میں تھوڑی سی تفریق کرنا چاہتے ہیں.
چودھری نعمان ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے اور مشرق وسطی کی صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں, سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب, ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, آپ کا انالیسز اسی پہ چاہوں گا. ایک تو کیا پریزیڈنٹ بشار الاسد, ان کی پولیٹیکل اپروچ بدل رہی ہے سیرین انٹروینشن کے بعد خاص طور پہ, اور سیکنڈ یہ کہ کیا ریبلز اور ٹیررسٹ گروپس کے اندر اب کوئی تفریق نمایاں ہو رہی ہے شام کے اندر؟
دیکھیں جی, آپ کو جب پچھلی دفعہ ہمارا ایک ہی پروگرام تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو رشین انٹروینشن اس کے اندر آئے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گی, کیونکہ ایک سٹیل میٹ بنا ہوا تھا, اب اس کو ہرٹنگ سٹیل میٹ میں بدل دیا گیا اور بیلنس آف پاور کا جو ہے نا سامنے آ رہا ہے. تو رشیا نے آ کے تھوڑا سے معاملے کے اندر جو ہے نا بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. اب رشیا کے آنے کی وجہ سے کوئی ڈائنامک چینج ہوئی تھی اور مطلب اب دونوں بندوں کو دونوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ ابھی ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا. یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں, دیکھیے جب بھی نیگوسیشن کے اوپر پارٹی جاتی ہے ان کے دو مطمع نظر ہوتے ہیں, ایک ان کا پوزیشن ہوتی ہے اور ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. پوزیشن ہمیشہ سخت ہوتی ہے اور جو لگتا ہے کہ اگر اس کے اوپر بات کی جائے گی تو کبھی بھی اگریمنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس سے کچھ کمزور اور کچھ ہلکا ہوتا ہے, جس کے اوپر پھر آپ پارٹیاں بیٹھ کے اگریمنٹ کے اوپر آ جاتی ہیں. تو ادھر سے جب سعودی عرب کا رول دیکھتے ہیں, انہوں نے بھی ایک بہت سخت رویہ اختیار کیا تھا کہ رشین جو انٹرویشن کو اپوز بھی کیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ کسی طریقے سے بشار الاسد کو ہٹایا جائے گا. میرا خیال ہے اگر کوئی اگریمنٹ آتا ہے تو بشار الاسد کو شاید ہم نہ دیکھیں, لیکن بعض پارٹی ادھر کی ادھر ہی ہوگی, اس کے بغیر کوئی سولوشن ہمارے سامنے نہیں آئے گا جہاں تک میرا انالیسس کام کرتا ہے.
تو کیا مائنس اسد کوئی سولوشن وہ رشیا کو قابل قبول ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ان کے بڑے اسٹرانگیسٹ الائی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟
نہیں دیکھیے, وہ رشیا کے ساتھ جو الائی ہیں وہ بعض پارٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کے والد صاحب جو تھے حافظ الاسد صاحب, وہ بھی رشین الائی سمجھے جاتے تھے, یہ بھی سمجھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بعض پارٹی وہی کی وہی رہے گی سین سے, اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن کے اندر یا کسی بھی طریقے سے ان کو کہا جائے کہ جی آپ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں اور اپنا کوئی نامنیٹ بندہ کر دیا جائے, پیچھے بیٹھ کے پھر اس کو چلاتے رہیں.
حالی صاحب, کیا 30 سیکنڈ,
کوئی
سولوشن
نہیں
آئے گا. حالی صاحب, کیا نعمان صاحب یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ باس پارٹی تو چل سکتی ہے لیکن مائنس اسد کا امکان موجود ہے, آپ کے خیال میں اس کے چانسز ہیں؟
مجھے لگتا ہے کہ بشار الاسد جو ہے وہ اپنی سیٹ سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی اپنی پارٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی پریزیڈنسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قابل قبول ہے مغرب کو اور روس کو. روس بے شک ان کا ایلائی ہوگا
جی, لیکن
روس بھی یہ چاہتا ہے کہ کم از کم وہاں پہ جو ہے خانہ جنگی ختم ہو. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بشار الاسد کو مجبور کریں کہ آپ کو اپنی قربانی دینی پڑے گی.
بہت شکریہ آپ کا جناب سلطان علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. چودھری نعمان ظفر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ دونوں احباب کے کمنٹس کے ساتھ دی. ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.